نحمده نصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری گفتگو کا عنوان ہے محبت کا دن، ویلنٹائن ڈے اور آج کا مسلمان. اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ بہنیں یہ بتائیں کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے اور کیسے منایا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں اور کیا ہوتا ہے آپ کے ہاں یا مسلمان گھرانوں میں اور اسکولوں میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے ویلنٹائن ڈے میں کہ اکثر بچے، اسپیشلی ٹین ایجرز بھی اور چھوٹے بچے، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہم صرف فن کے لیے مناتے ہیں، مطلب ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، تو اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو بتائیں کہ اس کو، مطلب اس پہ بلیو کیوں کرنا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ویلنٹائن ڈے کے متعلق اتنا جانتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اسکول سے سن کر آتے تھے کہ وہ ممی ریڈ کپڑے پہننے ہیں اور فرینڈس کو کلاس میں کینڈیز دینی ہیں اور وش کارڈز دینے ہیں کہ وی لائک دیم اینڈ وی لو دیم. اور اپنے ارد گرد بھی ہم دیکھتے تھے کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ کیکس اور پیسٹریز اور فلاور بوکے گفٹس ایک دوسرے کے لیے خریدے جا رہے ہیں کہ جی ہم پیغام محبت ہے جس جو ہم دے رہے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب میں نے جس سے وضاحت چاہی انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک لڑکا لڑکی کے درمیان ہو، یہ کسی کے بھی درمیان ہو سکتا ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ جس کو پیار کرتے ہیں آپ اس کو اس دن امپورٹنس دے رہے ہیں. تو ہمارا نظر یہ تھا کہ بھائی سارے دن امپورٹنس دو، لیکن ان کو تھا کہ نہیں اس دن تو وہ بچے کہ نہیں ممی اسکول کے لیے چاکلیٹس بھی چاہیے، وہ ہم اپنے دوستوں کو دیں گے اور ٹیچر کے لیے بھی کارڈ دیں گے کیونکہ ہم اپنی ٹیچر سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. تو ابھی تک تو میں نے اپنے ارد گرد یہی دیکھا ہے، آج میں دیکھوں گی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی یہاں پہ یہی دیکھا کہ بچوں کو خاص طور پہ کہ اسکول میں جو ہے وہ کارڈز بنا کے ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا تو وہ بہت زیادہ اس چیز سے شرماتا تھا، وہ کارڈز اس کو اس کی کلاس فیلوز جو تھی وہ دیتی تھی اور وہ چھپا کہیں سے غلطی سے مطلب مجھے مل جاتا تھا، تو وہ اس چیز کو بہت شرماتا تھا. اور پھر یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ امی ایک نے نہیں دیا، مطلب جو کہ جتنی لڑکیاں ہیں کلاس میں ان سب نے مجھے دیا ہے. تو میں اس کو منع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ایک کسی ایک نے نہیں دیا مجھے، تو کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب جیسے وہ اس کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی ایک میری گرل فرینڈ یا اس طرح نہیں ہے، مطلب کلاس فیلو ساری جو ہیں وہ سب دیتی ہیں. تو میں یہی اس کو صحیح دین اور قرآن کے مطابق یعنی سمجھانا چاہتی ہوں کہ کیا اس کے پیچھے ہم اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ مسلمان گھرانوں میں بھی یہ چیز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لوگ جو ہے خاص طور پہ جو بھابھی کہتے ہیں وہ خاص طور پہ ویلنٹائن ڈے کے دن جو ہے وہ فون کر کے ویلنٹائن کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں اس کی وضاحت چاہتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ویلنٹائن ڈے کی آمد آمد ہے اور بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی سبھی کو پتہ چل رہا ہے، میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے ماما ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، تو یہ لڑکے اور لڑکیاں یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں پہلے بات میں پھر میری بھی کر لیتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے؟ میں نے کہا چپ کر، میں تجھے بتاتی ہوں ابھی تو ہے کیا 8 ایئر کی ہے. تو پھر کہتی ہے ماما پلیز مجھے بتاؤ تفصیل سے. میں نے کہا میں اپنی ٹیچر سے پوچھ کے آؤں گی پھر میں بتاؤں گی. تو اس سلسلے میں ہم کو کوئی ٹھوس ثبوت دیا جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے.
محبت کا دن، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ محبت اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعریف میں خوب لکھتے ہیں
कहते हैं मोहब्बत की इससे ज्यादा और कोई तारीफ नहीं की जा सकती कि वो मोहब्बत है। तारीफ क्या है कि बस वो मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत की जितनी ज्यादा वजाहत करते जाओ तो बात और उलझती जाती है। इसकी तारीफ खुद उसका अपना वजूद है, मोहब्बत बस मोहब्बत ही है। फिर कहते हैं कि मोहब्बत जो है ये सिर्फ की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये की जा सकती है। और मोहब्बत की तारीफ में सबसे जामे बात जिसे अबू बकर कितानी रहमतुल्लाह अलैह ने जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। अबू बकर कितानी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि एक दफा हज के जमाने में मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए उलमा और शुयूख जो थे वो मक्का मुकरमा में ठहरे हुए थे, मोहब्बत इलाही में बात छिड़ गई, अल्लाह की मोहब्बत बात छिड़ गई, और इस उलमा की जमात में सबसे कम उम्र वाले जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, इनसे पूछा गया कि आपकी राय क्या है कि मोहब्बत इलाही क्या है। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए कराम की ये फरमाइश सुनी तो खामोश हो गए, फिर कुछ देर के लिए सर झुकाए रखा, फिर सर उठाया तो आंखों से आंसुओं की जड़ी बरस रही थी, जारो कितार रो रहे थे, सर नीचे झुकाया उठाया तो जारो कितार रो रहे थे। फिर कहने लगे मोहब्बत ये है कि बंदा अपने जी से गुजर गया हो, अपने जान से गुजर जाए और बेखुद हो जाए, अपने परवरदिगार का हर घड़ी जिक्र कर रहा हो और इसकी अदायगी में हर दम मशगूल हो, दिल की निगाहों से इसकी तरफ देख रहा हो, अल्लाह की हैबत के अनवार ने, नूर ने, रोशनी ने इसके दिल को जला दिया हो, हर वक्त जामे मोहब्बत से उसी की शराब सफा पिए रहता हो, अल्लाह ताला के पर्दा है गैब से इस पर हया जो है वो मुनकशिफ हो, जाहिर हो, अगर वो हम कलाम हो तो अल्लाह से, अगर वो बातें करे तो अल्लाह से, और औरों से बातें करे तो अल्लाह की बातें, अल्लाह के बारे में, अगर ये शख्स कोई हरकत करे तो अमरे रब्बानी से, कोई हरकत करे तो अल्लाह के हुक्म से, अगर वो रुक जाए सुकून इख्तियार करे तो अल्लाह ही के लिए सुकून इख्तियार करे, ये शख्स अगर जिए तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के बलबूते पर और अल्लाह ताला की मैयत में अल्लाह के साथ। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से ये कलमात निकल रहे थे, तमाम उलमा पे सन्नाटा छाया हुआ था, सब जारो कितार रो रहे थे। जब जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हुए तो सब ने कहा ए ताजुल आरिफीन, इस मौजू पर आपने मजीद गुफ्तगु की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मोहब्बत किसे कहते हैं, ये तीन चार हर्फों पर मुश्तमिल एक लफ्ज, ये दिल की धड़कन को कहते हैं, ये आंखों से आंसुओं के रवा होने को कहते हैं, मोहब्बत किसी के चाहने को कहते हैं, मोहब्बत का जज्बा दिलों को हरारत बख्शता है, ये सीनों के अंदर मौजन होता है, ये चेहरे की जो तमानियत तरोताजगी जो है उससे पहचाना जाता है, मोहब्बत जो है ये वो जज्बा है कि इसकी इंतहा को इश्क का नाम दिया जाता है। और मोहब्बत की तारीफ पूछनी हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछी जाए, जो मक्का के सहराओं में जाकर अपने बीवी और बेटे को जो थे वो बसा आए, जो बेखतर आतिशे नमरूद में कूद पड़े। और मोहब्बत की तारीफ पूछनी हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछनी चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने क्या क्या न किया। तो मोहब्बत जो है वो हकीर चीजों की भी हो सकती है और बड़ी चीजों की भी, नाकिस चीजों की भी और कीमती चीजों की भी। मोहब्बत जो है चीजों से भी हो सकती है और उसके साथ जो है वो इंसानों से भी, अपनों से भी हो सकती है और फिर बेगानों से भी, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये एक ताकतवर इंसानी जज्बा है जो किसी जिंदगी को आबाद भी कर सकता है और किसी को बर्बाद भी, ये दिलों को खुश भी कर सकता है और दिलों को तोड़ भी सकता है। और ये वो जज्बा है जो मोहब्बत का, कि अगर ये अफरात और तफरीत का शिकार हो जाए तो फिर जो है वो इंसान को पस्ती और तनज्जुल की तरफ भी ले जा सकता है, नीचे की तरफ भी, और फिर उसको वो बुलंदी की तरफ भी ले जा सकता है। तो जब पस्ती की तरफ ले जाता है तो ये इंसान को जानवर बना देता है, जब बगैर सोचे जो है वो हो, और जब ये जो है वो अफराद की तरफ ले जाता है तो फिर क्या है कि इंसान जो है वो अपने मकसद जिंदगी को भूल बैठता है। तो असल में अल्लाह की मोहब्बत इंसानी मोहब्बतों की और चीजों की मोहब्बतों की नफी नहीं करती, लेकिन मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए मोहब्बत करना जो है वो ये है कि एक मकसद जो है उसको चूज कर लिया जाए, एक एम ले लिया जाए, और फिर ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत जो है वो इंसान को अफरात और तफरीत से बचाती है। अल्लाह तो खुद मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाते हैं, सूरत अल बुरूज, वहुवल गफूरुल वदूद, और वो तो बेहद बख्शने वाला और कमाल मोहब्बत करने वाला है, अल वदूद। और वदूद का दर्जा मोहब्बत का आला दर्जा है। इसके मानी क्या है, वदूद मोहब्बत का वो दर्जा है जो इखलास से हासिल होता है, जिसमें किसी गर्ज या किसी शक का जो है वो शायबा भी ना हो। तो वदूद के दो मानी बयान किए जाते हैं, एक तो ये कि वो जात जिससे मोहब्बत की जाए, दिल उसको पेश कर दिया जाए, अपनी जज्बे, अपनी सोचें, अपने एहसासात, अपना सब कुछ उसको पेश कर दिया जाए, जिससे शदीद मोहब्बत की जाए, हत्ता के इश्क। और दूसरा दर्जा क्या है, और दूसरे इसके मानी क्या है, जो हमसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह की मोहब्बत जो है हमें कैसे नजर आती है, कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। इंसान का वजूद और कायनात की तखलीक ये अल्लाह की मोहब्बत का मुंह बोलता जो है वो सबूत है। अल्लाह की मोहब्बत के करिश्मे जो हैं वो अजल से अबद तक रहेंगे। अल्लाह हुस्न व जमाल का पैकर, खुद जमील जमाल, और उसके साथ जो है उसने इतनी खूबसूरत दुनिया और कायनात इंसानों के लिए बनाई। आप नजर उठाकर देखें तो हुसन की, खूबसूरती की, जमाल की कहीं कमी नजर नहीं आती। इसके इसका बनाने वाला रहमान अर रहमान, रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फिर अर रहीम, फिर आप देखिए कि मुसव्विर, खालिक, बारी, बनाने वाला कैसा है कि पत्थरों के अंदर जो है तरह तरह के रंग हैं, गराबीब भी हैं और अस्वाद भी हैं और अहमर भी हैं, पत्थरों के रंग हैं। फिर आप देख चट्टानों को देखें, आप जो है वो खिलते महकते फूलों को देखें, फूलों की रंगीनियां रानाइयां, आप इनको देखें कि तरह तरह के फूल, और फिर फूलों के अंदर की खुशबू को महसूस करें। आप पत्तों को देखें, आप गिरती हुई आबशारों को देखें, आप जगमग जगमग करते सितारों को देखें, आप चहचहाते परिंदों की तरफ मुतवज्जो हों। ये परिंदे जो फिजाओं में लाइनें बनाकर उड़ते हैं, तहद्दे निगाह, खाली पेट निकलते हैं और पेट भरकर रात को वापस आते हैं। तो फिजाओं पर उड़ने वाले परिंदे और जमीन पर चलने वाले जानवर, आप इनकी तरफ निगाह डालें। कायनात में हर तरफ अल्लाह ने हुस्न और जमाल को समो दिया है। हमारी जरूरत के लिए तरह तरह की अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं। हम एक चीज सोचते हैं और अल्लाह हमें वो चीज जो है वो फराहम कर देते हैं। हम एक चीज के बारे में तसव्वुर करते हैं और अल्लाह की तरफ से वो चीज जो है वो हमें मिल जाती है। तो मेरा और आपका चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला वो कौन है, वो अल वदूद है। بہت محبت کرنے والا، وہ حنان ہے. حنان کا لفظ ہن سے نکلا ہے، ہن اور ہنین درد دل اور سوز محبت کو کہتے ہیں، اور حنان کسی کی محبت میں جو ہے اس طرح سے گرفتار ہونا کہ اس کو اگر کوئی مصیبت یا تکلیف ہو تو اس سے اس کو باہر نکالنا. تو ایک ہے انسان کا کسی سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا. یا حنان یا منان یا اللہ، اللہ کے ناموں سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو حنان اے بہت محبت کرنے والے اور ہماری تکلیفوں سے ہمیں نجات دلانے والے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت اپنے گمشدہ بچے کی وجہ سے دیوانگی کی حالت میں تھی، اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، جو بچہ بھی نظر آتا اسے جوش محبت سے اپنی چھاتی سے لگاتی، دودھ پلانے لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا، کیا ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دہکتی آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا، جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے، اللہ کو اپنے بندے سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے. جس سے ہی بخاری کی روایت ہے. تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، سورۃ توبہ آیت 100، آیت 100. وہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور اس کے بندے سے راضی ہو گئے. وہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ کا کہنا مانا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اپنا اللہ کو آقا اور مالک جو ہے وہ سمجھا جائے. اللہ خالق، ہم اس کی مخلوق. اللہ مالک، ہم اس کی ملکیت. اللہ حاکم اور ہم اس کے محکوم. ہم اس کے محکوم. ہم نے اپنا یہ وجود کس سے لیا؟ ہمیں جسم کہاں سے ملا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تو ہے جو تمہیں جو ہے وہ مارے گا، موت دے گا. تو خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ. پھر ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے لیا؟ وہ بھی ہم نے اللہ ہی سے لیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے. دین کے ایک معنی ہے ڈے آف ججمنٹ کے، ایک معنی ہے زندگی گزارنے کے طریقے کے، اور ایک معنی ہے کسی بادشاہ کے ملک کے قانون کے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے کیا بات بتائی؟ کہ میں نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اسلام جو ہے ہم نے کہاں سے لیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لیا. تو اسلام لینے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو پسند کیا، اور مجھے اور آپ کو یہ دعا بھی سکھائی کہ اے مسلمانوں کیا کرو؟ یہ دعا مانگا کرو، سورۃ فاتحہ، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. ہم اس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اور مدد بھی کیسی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا سٹریٹ پاتھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کن پر انعام کرتا ہے؟ سورۃ نساء سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے چار قسم کے لوگوں پر انعام کیا، انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر اور صدیقین پر. چار قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کنہیں جہنم سے بچائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ اپنا انعام کرتا ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ کون سی ہمیں دعا سکھائی؟ اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، سب مل کر پڑھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت سے پھر ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں، انت علیہم خیر
المغضوب علیہم ولا الضالین.
انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے انعام کیا, وہ چار قسم کے لوگ, اور ان میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. خالی دعا سے کام نہیں چلے گا جب تک دعا نہیں کریں گے. تو دعا میں یہ سکھا دیا کہ نہ ہی دوالین کے پیچھے چلنا ہے اور نہ ہی مغضوب کے پیچھے. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. تو مفسرین کیا کہتے ہیں, محدثین کیا کہتے ہیں کہ مغضوب جو ہے اس سے مراد یہودی ہیں اور دوالین سے مراد نصارہ ہیں, کہ ان کے عملوں کی وجہ سے, عقیدوں کی وجہ سے, ان کے تنزل کی وجہ سے, رسوم اور رواج جو تھے ان پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے اور اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا. تو کہا کہ اے مسلمانوں, دعا کرو کہ تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ. اور پھر ساتھ ہی ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی, جیسے ہم احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. طبرانی کی روایت ہے کہ جو غیروں کے طریقے پر عمل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اقوام کی نکالی جو ہے اس سے منع کیا کہ ان کو کاپی نہیں کرنا. مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا اگر ان کی جو ہے وہ نکالی کی. پھر ایک موقع پہ فرمایا, یہ ترمذی کی روایت ہے, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرے. یہ مشابہت کیا ہے, یہ نکالی کسے کہتے ہیں؟ دوسری قوم کی کا حلیہ, اس کا لباس, اس کے رسم و رواج, اس کے طور طریقے جو ہے ان کو اختیار کرنا تشبہ ہے, ظاہری طور پر بھی اور پھر یہ کہ سوچوں کے لحاظ سے, جیسے عقیدے کے لحاظ سے بھی. ظاہری طور پر کیا ہے, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا, مونچھیں کترواؤ, داڑیاں بڑھاؤ, مجوس کی مخالفت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مونچھیں جو ہے یہ کترواؤ, داڑیاں بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اب مسلمانوں کی شناخت کیا ہے کہ داڑھی رکھیں, اور کہا کہ مونچھے جو ہے نا یہ اپنی تم کٹوا لو. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ غیر قوموں کی نکالی میں لمبی مونچھیں اور پھر ان کو جو ہے وہ تو دینا, اور اس میں جو ہے جیسے نام بھی ہوتا ہے کہ ہٹلر کی مونچھیں, لیلن کی یا چارلی چپلن کی, اور داڑھی میں بھی کیا آتا ہے کہ فرینچ کٹ ہے نا, بالوں میں بھی سٹائل کیا ہے, ڈیانا کٹ. تو غیر قوموں کی اور ان کے بھی جو لیڈر تھے, جو ان کو لیڈ کرنے والے تھے, تو اس پر جو ہے آج مسلمان قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انصار کی ایک لڑکی کی شادی اس حال میں ہوئی کہ بیماری کی وجہ سے اس کے بال گر چکے تھے. لوگوں نے چاہا کہ دوسرے بال لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا, لعن اللہ الواصلہ والمستبصلہ, اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں ان کی یہ تشریف آوری آخری مرتبہ تھی. آپ نے خطبے میں فرمایا اور دوران خطبہ دیتے ہوئے آپ نے بالوں کا گچھا نکال کر کہا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اور یہ فیشن کرتا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے تعبیر دیا, سماہ زورا یعنی الواصلہ فی الشعر, کہ بال جوڑنے کا جو فیشن ہے نا اس کو آپ نے زور کہا, اور یہ یہودیوں کا فیشن. جیسے وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ جو ہے یہ کسی کا فیشن ہوگا, یہ یہودیوں کا فیشن تھا. پھر اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ سے کہا, اسے بخاری نے روایت کیا ہے, تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی چیزوں سے روکتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب اس فیشن کو اختیار کیا تو وہ ہلاک ہو گئے, وہ تباہ ہو گئے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ये झूठ है कि असल बाल नहीं है और जो है वो मिलावट करके कोई और बाल लगाए जाएं। और फिर यहाँ सहाबा की बात से क्या बात पता चल रही है कि ये जो था ये फैशन जो है वो यहूदियों के अलावा और कौन करता होगा। तो असल बात क्या है कि फैशन में भी उनकी नकाली जो है वो नहीं करनी। फिर इसी तरह ये बुखारी की रवायत है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल यहूदा वन नसारा ला यसबगूना, यहूदो नसारा खजाब नहीं लगाते, फखालिफूहुम, तुम इनके खिलाफ तर्ज अमल इख्तियार करो। इसका मतलब क्या है कि तुम लगाओ क्योंकि वो नहीं लगाते। फिर एक मौके पर जो है आपने फरमाया कि इन बालों का रंग बदल दो लेकिन स्याह खिजाब से परहेज करो, ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा हो गया तो स्याह लगाए ताकि किसी को अपनी उम्र का जो है वो धोखा दे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो ये फरमाना मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो वो उन्हीं में से होगा। तो अब किसी दूसरी कौम की गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार करना, तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसलमानों को मुशाबहत से मना किया गया है, और मुशाबहत से मुराद क्या है, कुफार की जाहिरी अफाल में मुशाबहत। ये क्या है, अगर जाहिरी तौर पर कुछ काम कुफार कर रहे हैं और अगर मुसलमान भी करेंगे तो ये चीज जो है ये क्या है, ये उस पर हराम का इतलाक होगा। फिर आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना ही नहीं कि जाहिरी तौर पर जो है वो मुशाबियत से मना किया, जैसे दाढ़ी की बात है या फिर ये कि जो है बाल लगाने की बात है, बल्कि एक मौके पर आपने कहा कि यहूद की मुखालफत करो वो जूतों और मोजों में नमाज नहीं पढ़ते, ये अबू दाऊद की रवायत है। तो तशब्बो से बचने के लिए कभी कभार जूतों में मोजों में नमाज पढ़नी चाहिए, जैसे अब ये है कि नमाज जनाजा किसी मैदान में अदा की जा रही है या कहीं घास पर, तो अब वहां पर जो है जूते पहनकर अगर नमाज पढ़ी जाए तो कहा कि ये फिर उनसे तशब्बो नहीं होगा क्योंकि वो जूते नहीं पहनते थे। अब इसका ये नहीं मतलब कि जैसे कारपेट बिछे हुए हैं और टाइलों वाले फर्श है तो उस पर जूते ले जाए जाएं कि हम उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो है एक हमें इमाम मुस्लिम की रवायत पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले किताब और हमारे रोजों में एक सहरी के लुकमे का फर्क है, कि तुम सहरी किया करो कि ईसाई जो थे वो सहरी नहीं करते थे, तो सहरी जो है रसूलुल्लाह की सुन्नत है और एक मौके पे कहा इसमें बरकत है। तो फर्क को कायम करने के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए सहरी करना, कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, भूख नहीं है, चंद लुकमे चंद पानी के घूंट, ताकि हमारा जो है वो ईसाइयों के साथ इम्तियाज पैदा हो, एक फर्क पैदा हो। फिर इसी तरह अबू दाऊद की रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक मुसलमान अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, इसलिए कि यहूदो नसारा उसे मौखर करते थे, ताखीर से जो थे वो अफ्तारी करते थे। अब आप देखें कि यहां पे भी अब ये इबादत की बात है, सहरी और अफ्तारी कहा जा रहा है कि तुम सहरी करो कि वो सहरी नहीं करते, तुम अफ्तारी में जल्दी करो कि वो ताखीर से करते हैं। तो यहां पे क्या मकसद है कि मुसलमानों की अपनी एक तहजीब है, उनका अपना एक दीन है, उनकी अपनी अकदार है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक शियार है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो हैं अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि मुसलमान अपना वजूद अपना इस्लाम जो है उसको खो देंगे, इस्लाम जो है वो मिट जाएगा, फिर उनका ही रिलीजन उनकी ही कदरें उनका ही शियार जो है मुसलमानों के अंदर आ जाएगा। आप देखें जब नमाज पढ़ाने की शुरू शुरू में नमाज पढ़ने की बात थी और मुसलमानों को जमा करने के तरीके पर मशवरा किया जा रहा था कि किस तरीके से मुसलमानों को जमा किया जाए, तो किसी ने शंख बजाने का मशवरा दिया, आपने नापसंद किया, कहा ये यहूदियों का अमल है। एक और साहिब उठे, उन्होंने कहा नकूस जो है ना उसकी तजवीज दी, फरमाया नहीं ये नसारा की चीज है, इन दोनों तरीकों से जुदा जो है कोई और तरीका बताया जाए, यहां तक कि फिर अजान का तरीका जो था वो करार दिया गया, उसको मुकर्रर कर दिया गया, जिसे बुखारी ने रवायत किया है। तो आप देखें कि इबादत के लिए इकट्ठा करना है, इबादत की बात नहीं हो रही, इबादत के लिए इकट्ठा करने में भी कहा कि यहूदो नसारा का तरीका इख्तियार नहीं करना, इससे हट कर तरीका बताया जाए। इसी तरह عرب مزدلفہ سے حج میں طلوع آفتاب پر نکل جاتے. آپ نے فرمایا ہماری سنت مشرکین کی سنت کے خلاف ہے، چنانچہ طلوع آفتاب سے پہلے نکل جانے کا حکم دیا. مزدلفہ سے جو ہے وہ کیا کہا کہ طلوع آفتاب سے پہلے، اسی طرح عرفات سے غروب آفتاب کے بعد چلنے کا حکم دیا. کہا مشرکین کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اس سے پہلے عرفات کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین کی بھی مخالفت، اور ہر معاملے میں مسلمان جو ہیں ان کی اپنی ایک پہچان ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو صحابی جو تھے آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ احترامن جو ہے وہ احترام کریں. آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، کھڑے مت ہوا کرو. اس طرح فارسی لوگ، اجمی لوگ جو ہے اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ جو تھے وہ بیٹھے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور صحابہ کے دل پر کتنا جو ہے یہ بوجھل ہوتا ہوگا، کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ اللہ کے نبی آئے اور ہم کھڑے نہیں ہو رہے. اور آج ہمارے اساتذہ کیا کہتے ہیں، ساری طالبات سے کہا جاتا تھا نا کہ جب ٹیچر کلاس میں آئے تو سارے اسٹوڈینٹ جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جائے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے تھے کہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا تھا، ہے نا، کہ بچی کے لیے لڑکی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، یا ویسے بھی، لیکن یہ کہ کھڑا ہونا. اسی طرح مشرکین اور مجوسیوں کی عبادت کے جو اوقات ہیں اس میں جو ہے سجدہ دینے سے منع کر دیا گیا. وہ چڑھتے سورج اور ڈوبتے سورج کی وہ پوجا کرتے. کہا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور نصف و نہار کے وقت سجدہ کرنے سے منع کر دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. وہ انسانوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آپ دیکھیں ساری نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ بھی نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ کون سی نماز ہے، وہ نماز جنازہ. نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے. اسی طرح یہودی حائضہ عورت کو اچھوت بنا لیتے، تو کہا مسلمان عورت جو ہے اگر وہ حائضہ ہے تو اچھوت نہیں ہے، بس تعلق قائم نہیں کرنا لیکن اچھوت نہیں ہے، پاس بیٹھا جا سکتا ہے، کھانا اکٹھا کھایا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے. کہا کہ نہیں، ساتھ نو کا روزہ بھی رکھیں گے اگر زندہ رہے تو. کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ جو ہے مکس اپ نہ ہوا جائے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہود و نصارہ مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو. تو تشبہ بالکفار سے جو ہے وہ منع کیا گیا. محبت سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن محبت کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ بہت اہم ہے. اب ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے تو یہ دن جو ہے یہ بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور اب جو ہے اس دن کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ جو ہے ریلیجیس فیسٹیول نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہیں وہ دو ہی ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اللہ نے اس سے بہتر تمہیں دو دن دیے ہیں، اور ایک ہے عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا. تو اس دن جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرو. تو ہمیں اس وقت نیشنل لیول پر اور ملکی سطح پر اور خاندانی سطح پر، گھریلو سطح پر، ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ یہ دن جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا منانا چاہیے. اب ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی بات وسوخ سے نہیں پتہ چلتی. جیسے کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، پہلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ مشرکین کا یہ جو تھا یہ دن تھا. رومیوں کا عقیدہ تھا کہ روم شہر کے بنانے والے، جس نے روم شہر کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بنانے والے رومیوس کو ایک دن مادہ بھیڑیے نے دودھ پلایا، جس کی وجہ سے اسے قوت فکری، حلم و بردباری حاصل ہوئی. کہ مادہ بھیڑیا تھا اور اس نے جب روم کا جو شہر ہے اس کی بنیاد رکھنے والے کو اس نے دودھ پلا دیا، تو اس سے اس کے اندر اتنی بردباری، عقل مندی اور قوت پیدا ہوئی کہ پھر اس نے روم کی بنیاد رکھ دی. تو لہٰذا رومی اس واقعے کی وجہ سے ہر سال فروری کے وسط میں بہت بڑا تہوار منایا کرتے، اور اس میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ کتا اور بکری ذبح کرتے، اور مضبوط اور گٹھے ہوئے جس کے پٹھے ہوتے ہیں، عضلات ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ دو نوجوان جو تھے وہ لے لیتے، جو اپنے جسم پر کتے اور بکری کے خون کا لیپ کرتے، اور پھر اس خون کو دودھ کے ساتھ دھوتے. फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा काफिला चलता जिसके आगे वो नौजवान होते और काफिला गली कूचों और सड़कों पर चलता हुआ इन दो नौजवानों के हाथ में चमड़े के दो टुकड़े जो थे वो यानी वो चलता और ये दो नौजवान जो थे ना इनके हाथों में चमड़े के दो टुकड़े होते जो भी इन्हें मिलता उसे वो टुकड़े से मारते। अब ये जो दो नौजवान थे जिनके जिस्म पर कुत्ते और बकरी का खून लेप करते थे फिर खून को दूध से धोते थे। अब ये दो नौजवान भी चल रहे हैं काफिला भी चल रहा है इन दो नौजवानों के हाथ में क्या है चमड़े के दो टुकड़े हैं उन दो टुकड़ों से वो काफले वालों को मारते जो भी उनको मिलता और उनका ये अकीदा था कि जिनको ये चमड़े के टुकड़े से मारेंगे उनको शिफा मिलेगी। और औरतें जो थी ना रूमी औरतें बड़ी खुशी से ये कोड़े खाती वो चमड़े के टुकड़े से मार खाती उनका ये कीदा था कि इस तरह उनका बांझपन खत्म हो जाता है। तो इस तरह जो है ये जो था ये दिन जो था ये फरवरी के वस्त में ये दिन मनाया जाने लगा बड़ा त्योहार। फिर हुआ क्या कि सेंट वैलेंटाइन जो है ये नसरानी यानी ईसाई जो था कनीसा के दो कदीम कुर्बान होने वाले लोगों का नाम भी है। अब ये मुशरिकाना एक त्योहार था ये ईसाईयत में कैसे आ गया ईसाई जो थे अहले किताब तो अल्लाह को मानने वाले थे तो उसमें कैसे दाखिल हुआ। कहा जाता है कि दो लोग थे जो ईसाई थे और ये कनीसा में जो थे ये कुर्बान हो गए थे उनका नाम जो था वो सेंट वैलेंटाइन था और ये दोनों या तो दो थे या एक ही था। ये शहनशाह कलाडीस की सजा की ताब ना लाते हुए ये हलाक हो गया और फिर इन फौत होने वालों की जगह पर जैसे फौत तो 296 ईस्वी में या मिलादी में हुए और बाद में फौत होने वाले की जगह पर 350 मिलादी में बतौर यादगार के एक कनीसा एक इमारत बना दी गई। और जब रूमियों ने ईसाइयत कबूल की रूम जो मुशरिक थे बाद में वो ईसाई भी हो गए जब इन्होंने ईसाइयत कबूल की तो उन्होंने इस बुत परस्ती ये जो इनका फेस्टिवल था जो फरवरी के वस्त में मनाते थे उसको उन्होंने जो है वो शिर्क से निकालकर बुत परस्ती से निकालकर मोहब्बत इलाही के रंग में इसको बदल दिया और इसको यौम मोहब्बत का नाम दे दिया और इस दिन को मोहब्बत और सलामती की दावत देने वाले सेंट वैलेंटाइन के नाम कर दिया जिसे वो इस रास्ते का शहीद भी समझते हैं। इसे आशिकों की ईद और त्योहार का नाम भी देने लगे और सेंट वैलेंटाइन को आशिकों का सिफारशी और निगरान शुमार करते हैं। अच्छा इस दिन की इनकी भी कुछ फिर मशहूर रस्में हैं जैसे फिर इसमें ईसाइयत दाखिल हो गई फिर इनकी रस्में भी इसमें आ गई। इस दिन की एक मशहूर रस्म यह थी कि नौजवान और शादी की उम्र में पहुंचने वाली लड़कियों के नाम कागज के टुकड़े पर लिखकर एक बर्तन में डाले जाते और मेज पर रख दिया जाता और शादी की रगबत रखने वाले नौजवान लड़कों को दावत दी जाती कि वो इसमें से एक एक पर्ची निकालें लिहाजा जिसका नाम इस कुर्रे में निकल आता वो लड़का इस लड़की की एक साल तक खिदमत करता फिर वो एक दूसरे के इखलाक का तजुर्बा करते एक दूसरे को जानते पहचानते फिर बाद में शादी कर लेते या फिर आइंदा साल दोबारा जो वैलेंटाइन डे होता तो दोबारा वो कुर्रा निकालते यौम मोहब्बत के मौके पर। अब ईसाइयों ने जो है वो इस रस्म को बहुत बुरा समझा कि इससे नौजवान लड़के लड़कियों का इखलाक खराब होता है लिहाजा इटली में इसे बड़ी शोहरत हासिल थी उन्होंने इस पर इटली में इसको फिर बैन कर दिया कहा कि ये नाजायज है। फिर बाद में 18वीं-19वीं सदी के करीब वैलेंटाइन पर एक किताब भी लिखी गई और बड़ी तादाद में वो बिकी और उस किताब में इश्क व मोहब्बत के अशार थे और आशिकाना खतूत वगैरह ये सारी बातें थी। फिर इसी तरह कहते हैं कि दूसरी सदी ईस्वी में रूम पर बादशाह की हुकूमत थी यानी एक बादशाह था रूम पर उसकी हुकूमत थी बहुत बड़ी उसकी सल्तनत थी उसको लड़ने का बड़ा शौक था उसने बड़ी मजबूत फौज बनाई और वो चाहता था कि जो इर्द गिर्द के ममालिक है उन पर हमला किया जाए। अब जंगें तवील हो रही थी बहुत से फौजी मारे जा रहे थे बादशाह ने नई भर्तियां शुरू की और इन दिनों उसने भर्ती करने के लिए क्या किया कि जो शादी है ना जैसे कमारे लड़कियां लड़के तो उन पर जो है ना उसने पाबंदी लगा दी कि शादी नहीं हो सकती क्योंकि जो नौजवान थे ना वो जंग नहीं करना चाहते थे और वो कतराने लगे भर्ती होने से तो उन्होंने जो कंवारे नौजवान थे ना उनकी शादी पर पाबंदी लगा दी ताकि सरहदों की हिफाजत हो सके। तो वो नौजवान क्या चाहते थे कि उनकी शादी और बीवियों के साथ अपना वक्त गुजारे। तो वैलेंटाइन नाम का एक पादरी था और जिसने बादशाह के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग किया। रात की तन्हाई में वो रूम के मर्दों और औरतों को जमा करता इनकी खुफिया शादियां करवाता फिर बादशाह को इसके खुफिया जराए ने बता दिया कि वैलेंटाइन ये काम कर रहा है। अब वैलेंटाइन जो था वो रेड हैंडेड अरेस्ट हो गया, उसे जेल भेज दिया गया, और इतवार को वैलेंटाइन जो था वो कैदियों को, अमले को जो है वो इबादत कराता था, खुद भी करता था, उनको भी तलकीन करता था, और इसी मौके पर किसी ने, किसी तरह जेलर की बेटी ने उसको देख लिया, इस पर आशिक जो है वो हो गई, उसको देखा आशिक हो गई, फिर इसको खतूत लिखे। और अब था ये पादरी, जैसे पहले हिस्ट्री डिफरेंट थी, अब यहाँ पे आके चेंज हो गई, और पादरियों और राइबों के हाँ क्या था कि शादी नहीं करनी ना। अब जब वो लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ तो अब इससे ताल्लुक कायम हो गया, अब ताल्लुक कायम है या मिलना है तो अब क्या है कि ये भी ईसाइयों में हराम था। तो आखिरकार मुकदमा चला, इसने इतराफे जुर्म किया और जज ने जो थी वो मौत की सजा इसको दी। मौत से चंद दिन पहले वैलेंटाइन ने दुनिया का पहले यौम मोहब्बत बनाया उस जमाने में। ये कब की बात है, ये दूसरी सदी ईस्वी में। और उसने जो है एक खत लिखा और खत के आखिर में लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और अपनी उस महबूबा को भेज दिया। बाज कहते हैं फरवरी के दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन था, बाज कहते हैं 14 फरवरी 2007 था, बाज कहते हैं 2070 था। बहरहाल इसने फांसी के तख्ते की तरफ जब ये जा रहा था, इसकी अपनी महबूबा से मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन उसको एक खत लिखा और उसमें ये लिखा कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन विद लव, और फिर जो है अपनी महबूबा को ये खत जो उसने भेज दिया। तो फिर बाद में पॉप ने इसकी जो योम वफात था उसको योम मोहब्बत करार दिया, मोहब्बत का दिन, इसको फांसी दे दी गई। और बाहर लोग जो थे, रूमी नौजवान जो थे, वो अगले साल उन्होंने इसकी जो बरसी मनाई तो उसको वैलेंटाइन डे जो था उसका नाम दे दिया। अब इसी तरह जो है ये जो 14 फरवरी है इसको रूमी लोग मौसम सरमा और मौसम गर्मा के दरमियान समझते, कहते ये दो मौसमों के मिलाप का दिन है, या कहते बर्ड मीटिंग डे है कि परिंदे खुश होते हैं, बाहर निकल आते हैं और इनकी फिर शादियां होती हैं, कहते जश्न बहारा है, बहार की आमद और खुशी का दिन है। और फिर पहले तो ये इतना जैसे आम नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये दिन जो है मगरिब की दुनिया में मनाया जाने लगा, और मगरिब की दुनिया में जो है ये वैलेंटाइन डे जो है वो मनाया जाने लगा। और आज हाल क्या है कि अब मुसलमानों की कसरत भी इस दिन को जो है वो मना रही है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने 2008 में वैलेंटाइन डे को अपने यहां बैन कर दिया, और सऊदी गवर्नमेंट ने और वहां के उलमा ने ये फतवा दिया कि ये सही नहीं है। और अब वहां की गवर्नमेंट क्या करती है कि पुलिस को भेजती है तो वैलेंटाइन डे से चंद दिन पहले वो रेड जितनी भी चीजें है ना वो दुकानों से उठाते हैं, जिसमें रेड फ्लावर है, रेड गिफ्ट्स है, और रेड जो भी रेड बॉक्सेस हैं और रेड टेडी बेयर हैं, रैपिंग पेपर वगैरह, पुलिस जो है उनको जाकर उठा लेती है और बैन है कि ये नहीं मनाया जाना चाहिए। इसी तरह जो है वो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का है। और खास तौर पर शेख खालिद दसारी ने जो है ये बात कही कि ये गैर इखलाकी है, इसमें मर्द और औरत के दरमियान, लड़की और लड़के के दरमियान जो गैर शादीशुदा हैं जो ताल्लुकात होते हैं, तो इससे जो है वो इखलाक का जो है वो दिवालिया निकलता है। फिर सऊदी गवर्नमेंट मतलब उस जमाने में वहां पे क्या था, 5 रियाल का फूल 30 रियाल में बिकने लगा। तो अब अगर हम देखें तो वो लोग जो कि खास तौर पर मगरिब की दुनिया में आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है वैलेंटाइन डे के मौके पर क्या होता है कि मासूम बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं, आजादाना उनके ताल्लुकात को फरोग मिल रहा है, और खुलेआम मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत भरे पैगाम, कार्ड, डेटिंग करना, रक्सो सुरूद की महफिलें मुनक्किद करना, और स्कूलों में भी तालबिल्म जो हैं वो पार्टीज मुनक्किद करने से पीछे नहीं रहते। तो लव सीन दिन दिहाड़े हर तरफ जो है वो नजर आते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, तो आप देखें कि अगर इबादत में इनकी नकाली से, लिबास में, तौर तरीकों में उससे मना किया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो और फिर वैलेंटाइन डे जो है वो मनाए। और इसकी आपको हिस्ट्री भी पता चल गई, इसकी रूह भी पता चल गई, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। आप सोचेंगे जो है वो नेशनल रिटेल फेडरेशन ने अमेरिका की के बारे में ये बात कही कि 2007 में 16.9 बिलियन डॉलर जो है ना इस पर खर्च हुए, और 2009 में यूएसए टुडे की रिपोर्ट है 14.7 बिलियन डॉलर जो है वो इस पे खर्च हुए। और जो लोग भी खर्च करते हैं कैंडी, फ्लावर, ज्वेलरी, कार्ड, कपड़े और गिफ्ट सर्टिफिकेट पर जो है ये खर्च करते हैं। ये इस वक्त मेरे पास 2007, 2008 और 2009 की जो है वो पूरा जो है इसकी रिसर्च है कि कितना जो है वो इस पर खर्च होता है। आप सोचें कि 12 बिलियन, 16 बिलियन, 14 बिलियन और इससे मोर। और इसमें जो है मुसलमानों की भी कसरत जो है वो धीरे धीरे जो है वो शामिल होती जा रही है। तो ये मुसलमान उम्मत के लिए एक अलमिया है। एक औरत की जो है अपने मियां से लड़ाई होगी और बात तलाक तक पहुंची। अखबार में ये खबर थी कि वैलेंटाइन डे पर उसके शौहर ने उसको जो है वो तोहफा नहीं दिया। तो लोग कहते हैं इसमें क्या हरज है कि इस तरह हम कूल लगते हैं, इसमें क्या हरज है कि अगर हम मोहब्बत कर लें, क्या हरज है कि हम विश करते हैं, हम कार्ड देते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम हरज ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, इनके साथ मुशाबियत है। और तीसरी अहम बात यह है कि मोहब्बत करने का ये गलत अंदाज है। तो एक दिन मोहब्बत का नहीं, पूरी जिंदगी मोहब्बत की हम मनाएं। और मोहब्बत किससे? अल्लाह से। और अल्लाह से मोहब्बत क्या है कि अल्लाह की अताअत करें। और मोहब्बत किससे? अल्लाह के रसूल के और उनकी सुन्नत को और उनके मिशन को जिंदा करें। और मोहब्बत किससे? दीन इस्लाम से। आज हर तरफ जंग के बादल हैं, मुसलमान जलील और ख्वार हैं, हर तरफ कोई भी कोई बात होती है तो इल्जाम जो है जो मुसलमानों पर लग जाता है। तो ऐसे में हम सबको जो है वो क्या करना चाहिए? हमें नेकियों का प्रचार करना चाहिए। एक औरत मुझे बता रही थी पिछले साल उसकी बेटी इतना रो रही थी कि वैलेंटाइन डे है, रेड कपड़े पहने हैं। कह रही थी मामा मेरे पास तो रेड कपड़े मौजूद हैं, तो इसके पहनाने में क्या हरज है। आज मेरी टीचर ने कहा है कि रेड कपड़े। तो एक इस्लामिक स्कूल में ये देखा गया कि वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी की रेड हैट थी, तो किसी का रेड दुपट्टा था, तो किसी के जूते थे, किसी की सॉक्स थी, किसी के ग्लव्स थे, किसी का पूरा लिबास था। तो दुकानें जो हैं वो कारपेट रेड और हर चीज लोग रेड रेड कहते हैं कि ये मोहब्बत का दिन है। तो मियां बीवी की मोहब्बत जो है वो क्या है? ये इबादत है, हमें उसकी दुआ करनी चाहिए। और मोहब्बत किससे करनी है? हमें मोहब्बत जो है वालदैन से करनी है। और उसके लिए भी एक दिन नहीं कि मदर डे और फादर डे, यहाँ की तरह हर सुबह हर शाम। और फिर क्या है कि गोया के जन्नत कमा ली, हज मबरूर का सवाब मिल गया। और मोहब्बत किससे करनी है? नेकियों से करनी है। और इस सिलसिले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल के घर में जो थे वो मेहमान ठहरे। और जब उनके घर में मेहमान बने तो उनकी बेटी जो थी बड़ी हैरान हुई, कहने लगी कि अब्बा जान ये वही इमाम शाफी हैं जिनकी आप बहुत बातें हमें बताया करते थे। कहने लगे कि हाँ। तो बेटी कहने लगी कि मैंने तीन बातें ऐसी इनमें देखी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने पूछा कि वो कौन कौन सी? बेटी ने कहा जब हमने रात का खाना लगाया खूब पेट भरकर इन्होंने खाना खाया। फिर दूसरी बात यह कि खाना खाते ही जब अपने कमरे में गए तो बिस्तर पर लेट गए, ना कयामुल लैल किया और ना ही तहज्जुद की नमाज पढ़ी। और तीसरी बात यह कि फजर की नमाज बगैर वुजू के इन्होंने पढ़ाई। पानी का जो लोटा इनके वुजू के लिए रखा गया था इसको तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब बेटी की यह तनकीद सुनी तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ये तीनों बातें ना, तो उन्होंने उनका जवाब दिया। कहने लगे ए अहमद मैंने ज्यादा खाना इसलिए खाया क्योंकि मुझे यकीन था कि आपका खाना, मुझे यकीन है कि आपका खाना हलाल रोजी से है और तुम करीम भी हो और करीम का खाना इलाज होता है जबकि बखील का खाना मर्ज। और मैंने असूदा होने के लिए ज्यादा नहीं खाया बल्कि मेरे ज्यादा खाने की वजह यह है कि आपके खाने से अपना इलाज करूं। जहां तक बात है कि मैंने कयामुल लैल नहीं किया, दरअसल जब मैंने सर तकिए पर सोने के लिए रखा तो रसूलुल्लाह की बास आदीस मेरे जहन में आई और मैं उन पर गौर व फिक्र करने लगा। जब मैंने गौर व फिक्र करना शुरू किया तो 72 फिका के मसले जो थे वो मैंने निकाले जिनसे मुसलमान फायदा उठा सकते हैं। इसलिए पूरी रात जो है मैं सो ना सका और कयामुल लैल की फुर्सत ना मिली। और जहां तक बगैर वुजू के नमाज पढ़ाने की बात है तो सुनो अल्लाह की कसम मैं पूरी रात जागता रहा, नींद मेरी आंखों से मुकम्मल दूर रही और वुजू की तजदीद की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही वजह है कि मैंने इशा के वुजू से तुम लोगों को फजर की नमाज पढ़ाई। तो आइए अपने असलाफ से मोहब्बत करें, आइए उनकी जिंदगी से मोहब्बत करें, आइए नेकियों से मोहब्बत करें, आइए अपने दीन से मोहब्बत करें। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, मुकम्मल है। अल्लाह कहता है कि ये मुकम्मल है। अलयौमा अकमलतु, मैंने आज मुकम्मल कर दिया, मैं तुम पर राजी हो गया कि तुम दीन इस्लाम पर अमल करो। हम कैसी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि दिन मनाने के लिए काफरों की तरफ देखते हैं और उसने फिर हलाल हराम की तमीज खत्म कर देते हैं। अल्लाह जब पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि मोहब्बत इसको कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत के दावे किए जाए और दिन मनाए जाए काफिरों के। और बनी इसराइल के जमाने में एक दफा कहत पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जो थे बाहर आए दुआ करने के लिए, 70,000 या इससे जायद लोग थे, दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार हम पर बारिश कर अपनी रहमतों की। छोटे छोटे बच्चे, बेजबान बच्चे, जानवर, बूढ़े, बीमार, सब तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, इन पर तरस खाकर रहमत भेज दे। दुआएं होती रहीं, दूर तक कहीं बादलों का निशान ना था, सूरज की तपिश, गर्मी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि दुआ मांग रहे हैं और कबूल नहीं हो रही, तो पूछा कि क्या वजह है। वही आई, तेरे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो गुज़िश्ता 40 सालों से मसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है, गुनाहों पर इसरार है। ऐ मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दें कि वो निकल जाए, क्योंकि इस आदमी की वजह से बारिश रुकी हुई है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला, मैं कमजोर सा तेरा बंदा, मेरी आवाज भी कमजोर, ये लोग 70,000 या इससे भी ज्यादा, कैसे इन तक बात पहुंचाऊं। जवाब मिला, मिन कन निदाऊ व मिन नल बलाग, तेरा काम आवाज पहुंचाना और हमारा काम जो है, तुम्हारा काम आवाज देना और मेरा काम आवाज पहुंचाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आवाज दी, कहा, ऐ रब के गुनाहगार नाफरमान बंदे, जो 40 सालों से अपने रब को नाराज कर रहा है और उसको जो है वो दावत जंग दे रहा है, लोगों में से बाहर आ जा, तेरे काले करतूतों की वजह से आज हम रहमत से महरूम है, बारिश से महरूम है। इस गुनाहगार बंदे ने दाएं बाएं देखा, कोई भी अपनी जगह से ना हिला, वो समझ गया कि मैं ही मतलूब हूँ। अब सोचने लगा कि अगर बाहर निकलूं इतने लोगों में तो इतनी शर्मिंदगी और जगह आई, और ना निकलूं तो लोगों को बारिश नहीं मिलेगी। रोने लगा, अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया, अपनी गुज़िश्ता गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, तू कितना करीम और बुर्दबार है, मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा, और अब तो मैं यहाँ तेरा फरमा बरदार बनकर आया, मेरी तौबा को कबूल कर और मुझे माफ कर और आज की जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान बादलों से भर गया, मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, या इलाही, आपने बारिश कैसे बरसाना शुरू कर दी, वो नाफरमान बंदा तो मजमे से बाहर ही नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मूसा, जिसकी वजह से मैंने बारिश रोक रखी थी उसी की वजह से अब बारिश बरसा रहा हूँ कि इसने तौबा कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, इस आदमी से मुझे मिला दे ताकि इसे देख लूं। अल्लाह ताला ने कहा, मूसा, मैंने उसको उस वक्त भी रुसवा ना किया जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, अब जबकि वो मेरा मुती और फरमाबरदार बन चुका तो उसे कैसे शर्मिंदा और रुसवा करूं। वो एक गुनाहगार आदमी था पर बारिश का नजूल नहीं था, चंद अब वो बाहर आया है अल्लाह से दुआ मांगने के लिए और उसने इस्तग़फ़ार जब कर ली कि मैं गुनाहगार हूँ, तो अल्लाह ने तौबा उसकी कबूल की और उसके गुनाह माफ की और बारिश हो गई। तो इससे क्या बात पता चलती है, आज उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं तो इसकी वजह क्या है कि हमारे गुनाह हैं, इंफरादी भी और इज्तमाही भी, गैर कौमों की नकाली है, दावा है कि हम मुसलमान हैं, ये एक नारा है, हम कहने को मुसलमान हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। आइए इस आदमी की तरह सच्ची तौबा करें, अल्लाह की रहमत की बारिश हम पर हो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और आज उम्मत मुस्लिमा को अपना उसका खोया वकार जो है वो फिर मिल जाए। उम्मत मुस्लिमा के पास इतना वक्त कहाँ कि वो वैलेंटाइन डे मनाए। अल्लाह हम सबसे राजी हो, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें जो है वो अपनी अतात का दिन और रात मनाने वाला बनाए, अपनी बंदगी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।